तो अल्लाह ताला दिखा रहा है फिर वो सीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अभी बताया ना कि क्या चीज है जो इम्पोर्टेंस रखती है, और कौन सी चीज है जिसको तुमने समझा हुआ कि जो है ये है बस, जिसके ऊपर लगा दो अपना वक्त और सब कुछ। तो एक वो सीन दिखाया बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके, आगे एक ऐसा सीन दिखा दिया कि जब वो आ जाएगा ना तो पीछे पलटना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। वो क्या सीन है, सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि वो वहां जाके दिखा देता है हमें। तो वहां चले, देखते हैं क्या अल्लाह ताला हमें दिखा रहा है। आए कुरान है ना, सुभान अल्लाह। ये कुरान ऐसा है कि आपको वो दुनिया जो गैब की दुनिया है, जो फ्यूचर जो अभी तक आया नहीं और पता नहीं कब आएगा वो वक्त, उसको ऐसे हमारे सामने एक तस्वीर बना देता है कि इंसान को लगता है कि मैं उस वक्त में पहुंच गया हूं। उस वक्त में जब इंसान पहुंचेगा तब तो ख्वाहिश तमन्ना भी करता रहेगा ना कि मैं वापस चला जाऊं, तो नहीं जा सकेगा। मगर आज हम अपनी इमेजिनेशन में अगर वहां पहुंच जाते हैं तो हम वापस आ सकते हैं। वो क्या वक्त है, वो यौमन सय्यरुल जिबाल, और जिस दिन हम चला देंगे ना पहाड़ों को, वह तरल अर्द बारिजतन, और तुम देखोगे जमीन को बारिज, बिल्कुल खुली भी जाहिर जमीन ऐसे हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। इसके एक तो माना ये है कि यानी जमीन बिल्कुल फ्लैट कर दी जाएगी, जमीन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ना कोई वैलीज है, ना कोई पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ कैसे करे जाएंगे, चला दिए जाएंगे। बुस्सतिल जिबालु बस्सा, पहाड़ तो ऐसे हवा मुंबस्सा कर दिए जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे, बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, बादलों की तरह, जैसे जैसे दांत है ना उखाड़ा जाता है अपनी जड़ों से, इस तरह पहाड़ों को उनकी जड़ों से उखाड़ दिया जाएगा। उखाड़ के फिर उसके बाद उनको पीसेस करके क्रश कर लिया जाएगा, ऐसे जैसे पाउडर होता है। और फिर वो तो जाहिर है जब कोई पाउडर चीज है तो वो तो बादलों की तरह ऐसे जाएगी, इसीलिए कहा गया ना ये बादलों की तरह चलेंगे। अल्लाह अकबर। और इससे इंसान को समझा दिया गया कि देखो ये है जो यहाँ पे होने वाला है, ये पहाड़ अगर ऐसे हो जाएं जिनको तुम इतना स्टेबल समझते हो, इतना मजबूत समझते हो, तो सोचो कि फिर औरों का क्या हाल होगा। और ये जमीन जो कि तुम्हें बिल्कुल सीधी और वो लगती है कि बिल्कुल इस ये भी स्टेबल है, ये भी हिला मारी जाएगी। जलजला ऐसा आएगा, ऐसे हिला मारी जाएगी, वह इजल अर्दुमुद्दत, ये भी है ना फ्लैट कर दी जाएगी बिल्कुल सीधी। और एक दूसरा माना इसका, ये तो एक माना हो गया ना, इसका दूसरा माना ये है कि ये जमीन बारिजा खुली भी हो जाएगी, यानी जाहिर कर, जाहिर होगी ना, जाहिर माना बारिश का मतलब, यानी जाहिर करने वाली हो जाएगी, यानी इसके अंदर जो कुछ है ये जाहिर कर देगी। क्या क्या कुछ है इसके अंदर, कितने इंसान है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, कितने इंसान इसके अंदर हैं, कितने जानवर हैं, कितने चरिंद परिंद हैं, सब इसके अंदर ही गए हैं। कितनी इसके अंदर खजाने हैं, या जो कुछ भी इसके अंदर धातें, या जो कुछ, सब उगल देगी, बाहर कर देगी, खाली हो जाएगी सब उलट के। वालकत माफी है व तखलत आता है ना, तो सब कुछ उलट के और अंदर से इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। सोचे जरा कि कितना कुछ है इसके अंदर और सब बाहर आ जाएगा तो क्या होगा। अल्लाह अकबर। यानी हमें बताया असल में ये जा रहा है कि इस चीज की फिक्र करो, इस दिन की फिक्र करो, इस दिन बाकियात तो सालेहात ही काम आनी है। वहशरनाहुम, हम जमा कर लेंगे इनको, फलम नुगादिर मिन्हुम अहादा, हम इकट्ठा कर लेंगे इनको और एक भी इनमें से बाकी नहीं बचेगा। मिन्हुम का मतलब क्या, जो भी जमीन पे है ना उन सब को हम इकट्ठा कर लेंगे। यानी क्या कुछ है, क्या सिर्फ इंसान है जमीन पे? इंसान भी है, और जमीन के ऊपर और इसके नीचे इसके अंदर हर चीज, मैंने अभी बताया ना कितने जानवर हैं, कितने, हत्ता कि एक मक्खी को भी जमा कर लिया जाएगा, हत्ता कि हशरातुल अर्द जितने भी हैं सबको जमा कर दिया जाएगा। इजल वहुश हुशीरत, वहशी जानवरों को भी जमा कर लिया जाएगा। यानी हदीस में हम देखते ना कि एक बेसिंग बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो उसको भी अल्लाह ताला हिसाब के लिए उस दिन जमा कर लेगा। तो सोचेंगे कोई बचेगा नहीं, कोई भी नहीं बच सकता। और सूरह अनाम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी वला तायरी यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम, ये भी तुम्हारी तरह की उम्मतें हैं और इनको सबको अल्लाह ने जमा कर लेना, किसी को छोड़ना नहीं, कहीं कमी नहीं होगी। तो कोई इसका मतलब छुप नहीं सकेगा, कोई भाग नहीं सकेगा, कोई कहीं जा नहीं सकेगा, हर एक को हाजिर होना होगा। अब यहां पर आप देख लें किसी जगह पे भी कहीं पे भी अपॉइंटमेंट हो, 100% लोग नहीं हाजिर हो पाते। कोई क्लास हो, कोई कोई बीमार हो गया, कोई कहीं वेकेशन पे चला गया, कोई कहीं उसको जरूरी काम कोई पड़ गया, कोई ट्रैफिक में फंस गया, कोई कुछ हो गया, नहीं आ पाते, सब नहीं आ पाते। लेकिन यहां पर देखें सब हाजिर हैं, बूढ़ा तरीन इंसान जो चल भी नहीं सकता था वो भी आ गया है, और मक्खी मच्छर से लेकर बकरी गाय हर चीज आई खड़ी है। अल्लाह अकबर। तो यानी अल्लाह ताला हर एक लिविंग थिंग को जमा कर लेगा, चाहे जिन है या इंसान है। और फिर फरमाया वाउरिदु आला रब्बी का सफा, सब अपने रब के सामने सफों में खड़े होंगे। ऐसे नहीं कि हैजर्ड खड़े में, कोई ऐसे नहीं कि एक हजूम ही है, सफों में खड़े होंगे। दुनिया में तो सफ बनाने को कह दें तो एक मस्जिद में भी एक सफ भी सीधी नहीं होती, कोई बीच में कुर्सी रख के बैठ जाता है, वो सफ ही तोड़ देता है। और सफ जो होती है वो खड़े होने से होती है, बैठे भी नहीं होती, इसका मतलब कोई बैठा नहीं होगा वहां। यानी इतना छोटा बच्चा भी जो दुनिया में पैदा हुआ, और ऐसा बच्चा जो गिर गया वो भी उस दिन होगा। यानी गिर गया से मतलब ये है कि एबॉर्ट हो गया था या उसको एबॉर्ट करा दिया गया था, लेकिन उसमें रूह पड़ गई भी थी, वो बच्चा बन गया हुआ था, वो भी उस दिन होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लेकिन क्या चीज नहीं होगी, क्योंकि जमीन तो फ्लैट हो चुकी है, ना घर होंगे, ना गाड़ियां होंगी, ना कपड़े होंगे, ना जूते होंगे, ना मेकअप होगा, ना ज्वेलरी होगी, ना नाश्ता होगा, ना लंच होगा, ना डिनर होगा, कोई किचन ही नहीं होगा, ना कोई बाथरूम होगा, ना कोई दुकान होगी, ना फोन होगा, ना इंटरनेट होगा, ना अखबार होगा, और ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी, ना दोस्त अहबाब होंगे, ना कोई बच्चे वालदेन, ना हमसाए, कोई भी नहीं होगा। ये नहीं कि वैसे नहीं होंगे, मौजूद तो होंगे हम, अगर वो अपने नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। ना कोई पुरसाने हाल होगा, आज तो हम फौरन कह देते हैं ना हुकूमत हमारी इमदाद के लिए नहीं आई, तो वहां पे तो कोई भी ऐसे हुकूमत के उहदेदार नहीं होंगे, कोई एनजीओ नहीं होगी। अल्लाह अकबर। और साफ दर साफ सबने खड़े होना, सफों में खड़े होंगे। और इसके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत की 120 सफें होंगी कयामत के दिन। इसका मतलब है कि जन्नत वालों को अलग खड़ा किया जाएगा, जहन्नम वालों को अलग किया से खड़ा किया जाएगा, इससे तो यही पता चलता है। और फरमाया कि उसमें से 80 सफें मेरी उम्मत की होंगी, बाकी 40 सारी बाकी उम्मतों की होंगी। हमें ये भी पता चलता है कि हर पैगंबर के पीछे उसकी उम्मत होगी, तो इसका मतलब है कि पैगंबरों के साथ उनकी सफें उम्मतें सफों में खड़ी होंगी, ये भी समझ में आता है। एक हदीस से पता चलता है कि किताबो तौहीद में ये हदीस है कि कि अल्लाह ताला कयामत के दिन आवाज देगा, एक ऐसी आवाज जो ऊंची होगी मगर खौफजदा करने वाली ना होगी। इस आवाज को महशर में सब सुनेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, है मेरे बंदो, मैं अल्लाह हूं, आज कोई भी इला नहीं है, और मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, और अहकमुल हाकिमीन हूँ, और असरउल हासिबीन हूँ। हिसाब में यानी सबसे ज्यादा जल्दी करने वाला। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदो, आज तुम पर कोई खौफ नहीं, ना तुम गमगीन होगे। बस इतना करो कि अपनी दलील लेकर मेरे पास आओ, यानी जो भी तुमने काम किए ना दुनिया में उसकी दलील लाओ कि क्यों किए हैं तुमने, और हम आज तुमसे सवाल करेंगे। तो जो कोई सवाल किया जाए वो आसान जवाब तलाश कर ले, इसलिए कि आज सवाल किया जाएगा ना, तो तुम्हारा आज हिसाब किताब होना है। ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इन बंदों को सफों में खड़ा कर दो, इस तरह के अपने पांव की उंगलियों के बल ये खड़े हैं, तो उनको खड़ा कर दिया जाएगा हिसाब किताब के लिए, पांव की उंगलियों के बराबर ऊपर। इतना रश होगा, इतनी मखलूक है, लेकिन सबको खड़ा किया गया। और एक अल्लाह अकबर एक जगह पे आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने काब अहबार, जो आपको पता ना यहूदियत से इस्लाम लाए थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे यहूद के, तो उनसे फरमाया कि हमें कुछ आखरत की याद दिलाओ। तो उन्होंने फरमाया, जिस रोज रोजे हशर होगा तो इंसान, हर इंसान के हाथ में उसकी किताब होगी, उसका नाम आया अमाल होगा, जिसको इंसान देखेगा तो नेकियां बिल्कुल जाहिर होंगी, मगर इंसान वो इंसान अपनी बुराइयों को देखेगा कि मैंने कौन कौन सी बुराइयां की हैं। उसको डर लगेगा ना, वो अपनी बुराइयों की तरफ नेकियां भी लिखी हुई है, लेकिन वो अपनी बुराइयों को पढ़ेगा, हाय मेरी ये भी बुरा, ये भी बुरा। जब वो अपनी बुराइयों को सारी पढ़ लेगा, फिर अपनी नेकियां पढ़ने लगेगा, पढ़ पढ़ के फिर आखिर में जब एंड में आएगा, नेकियों का खत्म कर लेगा ना, तो एंड में लिखा होगा, जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया। इस मौके पर वो कहेगा, हाओ मुकराओ किताबिया, देखो लोगों मेरी किताब पढ़ो जो सूरह हाका में है। मुझे यकीन था मेरा हिसाब होगा, मुझे यकीन था मेरी पूछ गिछ होगी, मैंने बड़े ध्यान से अमल किए। इसी तरह एक आदमी जो फासिक फाजिर होगा ना, वो भी अपना नामा अमाल खोलेगा, उसकी बुराइयां लिखी होंगी और नेकियां भी लिखी होंगी, मगर वो अपनी नेकियों को पढ़ने शुरू कर देगा, बुराइयों को छोड़ देगा, कहेगा मेरी तो कितनी नेकियां, कितनी नेकियां। जब सारी नेकियां पढ़ लेगा तो फिर अब उसकी बुराइयां आगे आएंगी, वो उनको पढ़ेगा, तो आखिर में लिखा होगा, ये तुम्हारे गुनाह है जिनकी वजह से तुम्हारी बख्शिश नहीं है आज। तब वो कहेगा, काश मैंने अपना नामा अमाल ना पाया होता, काश मौत मेरा खात्मा कर देती। हज़रत उमर ने ये बात सुनी तो उनका दिल पसीज गया, रोने लगे। इसे पता चलता नसीहत सबके लिए, क्या हज़रत उमर नहीं जानते थे सारी ये बातें, मगर फिर भी वो चाहते थे हमें नसीहत की जाए, हमें बताया जाए। हम आज नहीं चाहते हमें बताया जाए, नहीं सुनना चाहते ऐसी बातें जिससे हमें रोना आ जाए, जिससे हमारा दिल नरम पड़ जाए, क्योंकि हम कहते नहीं नहीं हमने नहीं सुना, हम इस तरह डर जाते हैं। वो कह के सुनते थे, कहते थे हमें कोई आखरत की याद दिलाए, कोई बात बताए, हमें कहा भी जाए तो हम भागते हैं इन बातों से। कितनी गफलत है हमारे ऊपर, सुनना तक भी नहीं चाहते, और क्या करेंगे। तो उस दिन साफ दर साफ सब लोगों को खड़ा किया जाएगा, कितनी सफें होंगी वल्लाहु आलम, कितनी सफें होंगी टोटल, कितनी सफों में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। अगर ये जरूर पता चलता है कि वहां पर भी सफें बनेंगी, आप चाहे यहाँ पे सफ बनाना सीखे ना सीखे, वहां पे भी जाकर सफ बनानी पड़ेगी। और फिर क्या होंगे, लकद जितुमुना कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा। अल्लाह अकबर, देखो लोगो, हम तुम हमारे पास आ गए ना इसी तरह जैसे हमने पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया था, कि पहली मर्तबा कैसे पैदा किया था, नंगे जिस्म आए थे दुनिया में, कपड़े नहीं पहने हुए थे, बेखतना आए थे, खतने नहीं हुए हुए थे, पैर भी नंगे थे वैसे ही आए, बेसरो सामानी की हालत में थे, खाली हाथ थे ना, खाली हाथ ही वहां पर पहुंचोगे। अब देखें आप जरा कि इंसान किस तरह से अल्लाह के यहाँ खड़ा होगा, कि वो दोस्त अहबाब हैं, लेकिन आज वो दोस्त अहबाब तो ऐसे ही है कि इंसान इतने हजूम में भी बिल्कुल अकेला, पहली दफा जैसे पैदा हुआ था तो बिल्कुल अकेला ही था ना। अल्लाह के हत्ता के कहा गया कि इंसान उसी तरह पैदा होगा जैसे वो दुनिया में पैदा हुआ था, यानी अगर उसके कोई ऑर्गन्स दुनिया में निकाल दिए गए, मसलन किसी के कोई ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ चीज निकाल दी एक, या मसलन उसका दांत निकाल दिया, या उसके कोई उज्व जो बेकार हो गया था वो काट दिया गया था दुनिया में, वो पैदा तो उसके साथ हुआ था, और हाथ पैर कहीं काट दिए गए, तो अब वो वहां पर उनके साथ पैदा होगा, हत्ता के वो जो खतने में जितना हिस्सा उसका निकाल दिया गया था वो भी निकला हुआ नहीं होगा, वो भी उसको लेकर पैदा होगा, इसीलिए तो बेखतना होगा ना, बेखतना होगा, वो हिस्सा भी उसका वापस उसको करके उसको वैसे खड़ा किया जाएगा। तो ये भी बड़ा ही मुश्किल वक्तों का है, इसलिए कि इंसान की जो एक नेचर है ना, वो ये है कि चाहे वो कितनी मुश्किल के अंदर हो, कितनी भी परेशानी के अंदर हो, वो चाहता है, और इससे वो उसका दिल बढ़ता है, उसको हौसला मिलता है, जब उसके पास उसके कोई चार लोग आके खड़े हो जाते हैं, भले वो उसकी मुश्किल नहीं भी दूर कर सकते, क्यों हम किसी को अपना दुख सुनाते हैं, कि उसकी वजह यही होती है ना कि हमारे दिल को तसल्ली हो जाए, कोई दुख बांट ले, कोई हमारी बात सुन ले, चाहे वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस वो सुन लेता है वो, उतनी ही हमें तसल्ली हो जाती, हमारा दिल जरा थोड़ी ऐसे लगता है कि जैसे हमारा दिल जरा ठहर गया, ऐसे होता है ना। इतनी बड़ी मुसीबत और कोई सुनने वाला नहीं, हजूम इतना बड़ा फिर भी हर इंसान अकेला, किसी के साथ कोई नहीं, हालांकि कहने को वो हजूम में खड़ा हुआ लेकिन कोई भी नहीं साथ, जैसे मरने वाला होता है, चाहे उसके गिर्द कितने भी लोग हो, उस वक्त फिर भी वो कहता है कि जो मेरी मुसीबत है किसी को पता ही नहीं, फिर भी इंसान को ये तसल्ली होती है मेरे पास कोई है, उसके पास तो कोई भी नहीं होगा। और फिर इसी बारे में तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि इंसान इस तरह नंगे पैर नंगे बदन और बगैर खतने के खड़ा होगा, तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा था ना कि औरतें मर्द सब होंगे तो एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा वहां पर मामला इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा कि लोग एक दूसरे की तरफ देखें, और ये तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई किसी को ना देखे इस दुनिया में, आप देखें कि कोई हसीन जमील लड़की आ जाए तो कोई बूढ़ा आदमी भी होता है उसका भी चेहरा घूम जाता है, वो भी देखने लगता है वहां पे कितनी हसीनाएं, कितनी खूबसूरत, कितनी जवान, कितनी ऐसी लड़कियां नंगे बदन खड़ी होगी, कोई देखने वाला नहीं होगा, कितने चोर डाकू और गंदे किस्म के लोग भी, जानी शराबी वो भी होंगे वहां पे, वो भी तक नहीं देखेंगे, इसका मतलब है कि क्या हाल होगा, इससे ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंसान किस पोजीशन में होगा, और नंगे बदन होंगे, सबसे पहले किसको लिबास पहनाया जाएगा, आप सोच रहे होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नहीं, इब्राहिम अलैहि सलाम को, उनको सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा, क्यों, बाज उलमा ये कहते हैं, बाज ने ये लिखा है कि उनके कपड़े रिप ऑफ किए गए थे जिस वक्त उनको आग में डाला गया था, तो अल्लाह की खातिर उनके वो लिबास उतारा गया था और उनको आग में डाला गया, अब अल्लाह ताला उनको सबसे पहले लिबास पहनाएगा, अल्लाह अकबर। तो बलजाम तुम अल्लाह नजअललकुम, अल्लाह अकबर, तुमने ये समझा हुआ था कि तुम तुम्हारे कोई वादे का वक्त नहीं, उस वक्त कहा जाएगा, तुमने क्या समझ लिया था तुम्हें वापस आना ही नहीं है, तुमने क्या समझ लिया था वहीं बैठे रहना है तुमने, अल्लाह ताला का वादा है ना कयामत आएगी, अल्लाह का वादा है ना तुमने जमा होना है, ये अल्लाह का वादा है कि एक दिन ऐसा आने वाला है, इंसान कहता है ना वो कुछ नहीं होता, ये सारी यानी मौलवियों के डरावे हैं, कुछ नहीं है। ऐसे एक कहता है ना एक दूसरे को, तुमने क्या सोचा था, कभी भी नहीं वापस आना तुमने लौट के। अब कितनी उस इंसान के लिए एम्बेरसमेंट की बात है, कितनी उस इंसान के लिए शर्मिंदगी है कि अब देख लिया ना तुमने, आ गए ना तुम तो कहते थे कोई क्यामत ही नहीं। अल्लाह अकबर, कितनी खुली खुली आयतें हैं, कितनी खुली आयतें हैं कि इंसान कौन है जो इन आयतों को कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही। कितने ही लोग हैं जुबाने काल से तो नहीं कहते, बेशक जुबाने हाल से कह रहे हैं कुछ नहीं होना, कोई नहीं आनी क्यामत व्यामत, कुछ नहीं है, ये सारी ऐसी बातें उनके दिल में यकीन नहीं है इसका। लेकिन अल्लाह ताला तो जानता है ना किसके दिल में यकीन है और किसके दिल में यकीन है ही नहीं, और वो यही समझता है कि ऐसे ही गेट अवे हो जाना है। तो अल्लाह ताला उस दिन उनको बता देगा, तुमने क्या ये समझा हुआ था, तुम तो यही समझते थे ना नहीं कुछ होगा। ये देखो अब सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत सुनो।
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا